इस शब्द शांति अनुभूति एवं प्रवचन सत्र में आज एक ऐसी महान विभूति, धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व के धनी महान योगी तपस्वी आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं, करते हुए स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। आप हैं राजयोगी बाल ब्रह्मचारी सूर्य भाई जी, जोरदार करतल ध्वनि के साथ। हम सब भली भांति जानते हैं कि आसमान में कोई दूसरा सूर्य कभी नहीं हो सकता, इस धरती पर और इस अध्यात्म जगत में सूर्य भाई जैसे भी, और न भूतो न भविष्यति, न दूसरे हैं न हो सकते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का अभिनंदन करने के लिए मैं अपनी ब्रह्म कुमारी बहनों से अनुरोध कर रही हूँ, पुष्प गुच्छे और बैच के साथ सम्मानित करें। आप बाल्य अवस्था से ही आध्यात्मिक परिवार में सुसंस्कृत और संस्कार के साथ, आप विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी आपके भीतर में ईश्वर प्राप्ति की एक अलख थी और स्वयं भगवान के आह्वान पर आप पहुंचे यहाँ पर। आप 1964 में ब्रह्मा कुमारीज के सानिध्य में आए और 68 में जब स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पिता श्री जी थे, उस समय आप यहाँ समर्पित हुए और स्वयं बाबा ने आपको भंडारे का समस्त जिम्मेवारी सौंपी। तब से लेकर के आज तक जनमानस को तीनों स्थानों पर आप पवित्र शुद्ध और योगी पवित्र आत्माओं के भोजन, पवित्र आत्माओं के हाथ से बना भोजन प्रदान होता है। ये यहाँ का जितना सुंदर पवित्र वातावरण है उसका प्रभाव, जैसा अन्न वैसा मन। ऐसे महान योगी भाई जी, आपके पास थॉट पावर, संकल्प शक्ति से हम संसार की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये आपके पास अनेकों लाखों उदाहरण हैं जिसको हम समस्या समाधान पीएम टीवी चैनल पर रोज सुनते हैं, देखते हैं। ये इसका जीवंत उदाहरण है। हम आपके लिए कुछ कह पाए ये तो सूरज को दीपक दिखाना है, फिर भी हम इतना ही कहते हैं कि सूर्य जैसा तेज, वायु जैसा वेग, चांद सी शीतलता और फूलों जैसी मधुरता लिए आज इस सत्र में हम सभी को शांति की गहन अनुभूति करवाएंगे भ्राता सूर्य भाई जी।
ओम शांति। सभी महात्माओं का और आप सभी धार्मिक प्रभाग में पधारे प्रभु प्रेमी भाई और बहनों का स्वागत है। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, न केवल जीवन को शांत में बनाना, चित्त को शांत करना, बल्कि शांति की शक्ति से भी स्वयं को संपन्न करना है। शांति की शक्ति अर्थात हमें स्वयं को ऐसा शक्तिशाली बनाना है कि हमारी शांति को कोई नष्ट न कर सके, ये लक्ष्य बनाकर हम चलते हैं। पसंद है? विदेशों में मैं पीछे ब्रिटेन में था, कई लोग अपने द्वार पर एक छोटी सी चिटकी चिपका देते हैं, इन साइलेंस प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मैं शांति में हूं, मेरी शांति को डिस्टर्ब न करना। ये शांति कैसी है? मैं किसी की गिलानी नहीं कर रहा हूं। ये शांति कैसी है? निर्बल। हमें ऐसी शांति प्राप्त करनी है कि अशांत वातावरण में हम शांत रहें और हमारी शांति के वाइब्रेशंस अशांत आत्माओं को भी शांति का अनुभव करा दें। तो थोड़े में इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। पहले आप सभी यहाँ आकर ये अवश्य महसूस कर रहे होंगे कि शांति की तो तलाश युगों से बुद्धिमान मनुष्य को रही है, पर पहले विचारणीय ये है कि अशांत किया किसने। मिल रही है रोशनी इस पर? कोई व्यक्ति अगर अशांत है, छोटी बातों में परेशान होता है, छोटी बातों को सहन नहीं कर पाता है, शांति नष्ट हो जाती है, तो उसको इतना कमजोर बनाया किसने? जान गए होंगे आप यहाँ, मनोविकारों ने। और समस्याओं का जो वृद्धि है आजकल संसार में, समस्याओं की वृद्धि, वो भी इसीलिए हो रही है कि मनुष्य का मन बहुत निर्बल है। अभी मैं आ ही रहा था यहाँ के लिए, फोन आने लगा। मैंने कहा भाई क्या बात है, मैं तो क्लास के लिए जा रहा हूँ। कहा ये माता बैठी है, जल्दी जल्दी टेंशन में रहती है, थोड़ी सी बीमार हुई है, यही सोच रही है मैं तो ठीक होंगी नहीं, इसे समझाओ थोड़ा, मैं तो मर जाऊंगी। आज हम सभी यहाँ बैठकर अपने जीवन को जीने के लिए, सुखी जीने के लिए एक फॉर्मूला बना ले, 5-point फॉर्मूला, 5 बातों का एक सूत्र बना लें, एक नियम बना लें अपने लिए, जिससे हमारा मन शांत रहे, जिससे हमारा मन शक्तिशाली बन जाए, हम आने वाले जीवन के चैलेंजेज को हंसते हंसते पार कर सकें। हमारी शांति को भंग करने का अधिकार किसी को हम न दें। बातें आएं, समस्याएं भी आएं, परेशानियां भी पैदा करने वाली चीजें हों, पर हमारी शक्तियों के सामने नष्ट हो जाएं। जैसे आग जला दी जाए और मच्छर आ जाएं, तो मच्छरों का क्या होगा, जलेंगे। बातें भी ऐसे ही जल जाएं। मैं आपको वो 5 बातें इस पूरी क्लास के अंतर्गत रखूंगा, आप नोट कर लेना, कैच कर लेना। मनुष्य का मन जितना तेज स्पीड से आज चल रहा है, उतना पहले कभी नहीं चला था। आप में से जिन्होंने कभी सुना हो कि महर्षि पतंजलि ने अब से लगभग 2500 वर्ष पहले राजयोग का प्रतिपादन किया था, योग दर्शन लिखा, और यहां से शुरुआत की थी कि हर मनुष्य अपने मन की शक्ति का 80% नष्ट करता है, केवल 20% यूज कर रहा है। यदि उसकी 80% शक्ति बचा दी जाए तो मनुष्य बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए उन्होंने अष्टांग योग सिखाया, जिसका स्वामी रामदेव जी हैं, मुझे रामानंद ही याद आता है, जिसका 1-2 हिस्सा ले लिया आसन प्राणायाम पर। ये योग बहुत सुंदर है, आसन प्राणायाम को योग नहीं कहा जाता, ये तो योग की शुरुआत है। तो उन्होंने निर्संकल्प समाधि तक तपस्वियों को पहुंचाने के लिए 8 सूत्र निर्धारित कर दिए, ताकि 80% जो व्यर्थ विचार चलते हैं, जिससे ब्रेन की 80% शक्ति नष्ट होती है, उसको बचाया जा सके। आज के मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य अपनी 90% शक्ति को नष्ट करता है, 10% केवल यूज हो रही है। इसका अर्थ ये है कि ब्रेन की भी 90% शक्ति नष्ट हो रही है, 10% भी मैं क्या कहूँ, कोई 5% ही यूज कर रहे हैं। आइंस्टाइन के लिए लोग कहते हैं उसने अपनी ब्रेन की 30% शक्ति यूज की थी, तो भी बड़ी बड़ी रिसर्च कर गए वो विज्ञान के क्षेत्र में। हमें यहाँ सीखना है क्यों मन की स्पीड तेज हुई। नॉर्मल स्थिति में हरेक मनुष्य के मन में 25 संकल्प प्रति मिनट उठते हैं। आजकल ये स्पीड बढ़ती जा रही है, 30, 35, 40। योगियों को क्या करना है, इस स्पीड को धीमा करना है। 25 से 15, 10, 5 और जो योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है 1। एक संकल्प में स्थित हो जाना, जिसको निसंकल्प स्थिति भी कहेंगे, तब हम अपने संकल्पों की शक्ति को बचा सकेंगे। तो आजकल की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है मन का तेज भागना, है या नहीं, है या नहीं? मेरे पास बहुत आते हैं, युवक बहुत आते हैं, मन बहुत तेज भाग रहा है, हम बहुत सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं ये हमें पता नहीं, पर हम सोच रहे हैं और इससे परेशान हो रहे हैं, न एकाग्रता हो रही है। अनेक लोग अपने मन के संकल्पों से बहुत परेशान हैं। तो हम विचार करेंगे, हम अपने मन को तेज न भगाएं। पहला फॉर्मूला, इसको निगेटिव होने से बचाना है। मनुष्य निगेटिव सोचता है। एक दूसरा केस था कि मनुष्य सोचता है घर से बाहर निकले कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। शुरुआत ही यहां से कर दी, बारिश हो रही गिर न जाए कहीं, बाइक स्लिप न हो जाए। निगेटिव सोचने की आदत से बचेंगे। जिनको इस जीवन में शांति का अनुभव करना है, अपने मन को शांत करना है, चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करना है, उन्हें पहला फॉर्मूला है निगेटिव सोचने से बचना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। धीरे धीरे अभ्यास करने से मन पॉजिटिव होने लगेगा। बिजनेस में जरा सा नुकसान हो गया, अब निगेटिव सोचना शुरू कर दिया, ये नहीं। क्यों नहीं सोचना है, मैं आपको एक सुंदर बात की ओर भी ले चलूंगा। दूसरी बात, सभी के बहुत काम की है अपने मन की संकल्पों की स्पीड को तेज होने से बचाने के लिए। मात्र शक्ति बहुत बैठी है, ध्यान दें सभी, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। सच्ची बात है या नहीं है? बहुतों में आदत है। इसलिए विद्वानों ने कहा है, किसी भी समस्या पर, किसी भी बात पर यदि तुम विवेक युक्त होकर विचार करो तो तुम्हें पता चल जाएगा वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी प्रतीत हो रही है, वो छोटी है, उससे अधिक शक्तिशाली तुम हो। वो बात और वो समस्या शक्तिशाली है ही नहीं। याद रखेंगे ये फॉर्मूला, बातें और समस्याएं पावरफुल और बड़ी नहीं है, पावरफुल तो हम हैं। क्यों हैं हम पावरफुल? बोलो, आपने सुन लिया या बहुत कुछ, किसके बच्चे हैं हम? किसके बच्चे? सर्वशक्तिवान के। ऐसे बोलो, किसके बच्चे? शेर का बच्चा क्या होता है? तो सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर थोड़ा ही होंगे, वो भी शक्तिशाली होंगे ना, होंगे या नहीं? तो हम उसके लिए एक शब्द यहाँ यूज करते हैं, हमारा परमपिता है सर्वशक्तिवान और हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इसके द्वारा आप अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ से ये सुंदर चिंतन लेकर जाएं, ये अवेयरनेस लेकर जाएं, अपने को जगाएं रोज, हम सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो छोटी छोटी चीजों से घबराएंगे नहीं, भय समाप्त हो जाएगा, आपसे निकलने वाले वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। जैसे आप कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी सुंदर आश्रम में जाते हैं, यहाँ भी आपने देखा होगा वाइब्रेशंस अलग होते हैं ना, शांत एकदम, शांत। तो वाइब्रेशंस हम खुद क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशंस के रचने वाले हम स्वयं हैं। जिस स्थान पर हम रहते हैं वहां जैसे विचार हम करेंगे वैसे ही वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगे। हम जो कुछ सोच रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, एक सुंदर रहस्य इस सृष्टि का सीक्रेट आपके सामने है। हम जो कुछ सोचते हैं उसकी किरणें हमसे चारों ओर फैलती हैं, तरंगें, वाइब्रेशंस। आपने देखा होगा देवताओं के चारों ओर प्रभा मंडल दिखाया जाता है, ये प्रभा मंडल हम सबके चारों ओर भी है। हमारा थोड़ा छोटा होता है, उनका पावरफुल होता था। इस प्रभा मंडल को ओरा कहते हैं इंग्लिश में। इसको हम बहुत पावरफुल बना सकते हैं, अपने वाइब्रेशंस को सारे संसार तक भी पहुंचा सकते हैं, बहुत पावरफुल प्रभा मंडल बना सकते हैं जिसमें मायावी शक्तियां और विघ्न आ ही न सके। देखिए, मैं बचपन से ही, मुझे बहुत छोटी आयु से, छोटी आयु में मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ज्यादा आभास नहीं होता। मुझे लगता था मुझे इस सृष्टि के अनेक रहस्यों को जानना चाहिए। मैंने दर्शनों का अध्ययन शुरू किया छोटी आयु में, समझ में ज्यादा कुछ नहीं आता था, पर एक बात मुझे अपील करती थी कि ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष के मिलन से चलता है। पुरुष माना आत्मा, प्रकृति ये सब बाह्य जो हमें दिखता है, आत्मा है दृश्य, दिखती नहीं है, और जो दिखता है आंखों से वो सब प्रकृति। तो इसके बाद ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। जब यहां आए और ईश्वरीय महावाक्यों में मन के विचारों के बारे में, संकल्पों के बारे में बहुत गहरी बातें हमें सुनने को मिलने लगी, तो ये रहस्य समझ में आ गया। सुने आप उस रहस्य को, मैं एक मिनट में बता देता हूं, और इस सृष्टि का बहुत बड़ा रहस्य है ये, आप इस पे चिंतन करेंगे। हम जो कुछ संकल्प करते हैं उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वो पहुंच रहे हैं प्रकृति में। यहीं से प्रकृति शुरू हो गई, हमसे बाहर निकले और प्रकृति में वो पहुंचने लगे। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस और प्रकृति के बीच में रिएक्शन होता है, रिएक्शन प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को आप सब जानते हैं, दूध में चीनी मिला दी, दूध कैसा हो गया? चीनी और दूध के बीच में रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई, दूध मीठा हो गया। पानी में नमक मिला दिया, नमकीन हो गया, दोनों में प्रतिक्रिया हुई। ऐसे ही मनुष्य के वाइब्रेशंस में और प्रकृति में निरंतर प्रतिक्रिया चल रही है। तो जैसे हमारे विचार के वाइब्रेशंस हम प्रकृति को दे रहे हैं, प्रकृति वैसा ही निर्माण करके हमें वापिस कर रही है। यह है सुंदर रहस्य, इसको सबको ध्यान रखना है। इसलिए सब अपने से बात करें, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। माताएं भी सोच लें अच्छी तरह, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं, माताएं नहीं बोल रही, मैं। दूसरों की तरफ उंगली करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपने को छुड़ाने के लिए, छुपाने के लिए दूसरों की ओर उंगली कर देता है। इसके कारण हम दुखी हैं, इसने हमें परेशान किया है, ये नहीं। तो ये बहुत बड़ा सृष्टि का रहस्य है। अगर प्रकृति बहुत बारिश कर रही है उसके जिम्मेदार भी मनुष्य, अगर अकाल पड़ रहा है उसके जिम्मेदार भी मनुष्य, अगर कोई भूख से मर रहा है उसके जिम्मेदार भी मनुष्य, अगर संसार में चारों मनोविकारों का बोलबाला है, समस्याएं उग्र रूप लेती जा रही हैं, कैंसर और बहुत सारी बीमारियां मनुष्य को, इस सृष्टि को अपने चंगुल में फंसाती जा रही हैं, उसका जिम्मेदार मनुष्य है। तो हम थोड़े योगी, अगर इस संसार के थोड़े अच्छे योगी संसार को पवित्र वाइब्रेशंस देने लगे तो संसार की स्थिति में सुधार आ सकता है। मैं बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक बहुत प्यार से बार बार पढ़ता था, मुझे उसका अध्याय तो भूल गया, वो ये श्लोक है, सुने आप, बहुत सुंदर रहस्य। हे अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, संकल्प नहीं है, बहुत कम संकल्प है, ऐसा योगी इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। एक योगी अगर हिमालय की गुफाओं में बैठकर केवल तपस्या कर रहा है, वो उपदेश नहीं कर रहा है, वो समाज में जाके भाषण नहीं करता है, तो भी वो इस सृष्टि के लिए बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि उसके वाइब्रेशन सारे संसार में फैल रहे हैं। हम सब भी अपने मन को जितना शांत रखेंगे, आप घर में रहते हैं, आप ऑफिस में बैठते हैं, आपको बिजनेस है, आप कहीं टीचर हैं, जहां आपका समय ज्यादा बीतता है, जितने कम और सुंदर विचार आपके मन में होंगे, आपसे चारों ओर उतने ही शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे, उससे आपका कार्य भी बहुत अच्छा चलेगा, विघ्न नहीं आएंगे, सब आपके गुड फ्रेंड बनकर रहेंगे, सहयोगी बनकर रहेंगे, इससे आप अपने जीवन की कार्यों की अनेक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। तो हमें अपने चित्त को शांत रखना है, एक चीज से विशेष रूप से बचना है शांति के लिए, सबको बचना है, दो चीजें हैं वो जो मनुष्य की महान शत्रु हैं आजकल, क्रोध और अभिमान। हैं या नहीं ये शत्रु हैं? देखिए, आज ये एक और समाचार मुझे मिला, एक प्रश्न आया था, हम रिकॉर्डिंग के लिए गए, एक बहन पूछ रही थी, हमारे परिवारों में तीन चार पीढ़ी से सभी लोग बहुत गुस्सा करते हैं। सुना आपने कभी ऐसा प्रश्न? चार पीढ़ी से परिवारों के सभी लोग बहुत क्रोध करते हैं, हमारे घर में बहुत अशांति रहती है, मैंने केवल अब ज्ञान लिया है, मैं चाहती हूँ ये क्रोध यहीं समाप्त हो जाए, आगे ना बढ़े। सचमुच क्रोध ऐसी गर्मी है इसमें, जो घरों में पानी के मटके भी सूख जाएं। सबको इससे बचना है। अभी कहने से तो नहीं काम होगा, मैं कहूं क्रोध न करना और आप कहें आज से नहीं करेंगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्रोध और अभिमान को जीतना बहुत बड़ी साधना है। जिस मनुष्य के पास क्रोध और अहम है, उसे कभी शांति का अनुभव नहीं होता है। एक बार दिन में क्रोध आ जाए 5-7 मिनट के लिए भी, सारे दिन के लिए मन विचलित हो रहेगा, एकाग्रता होगी नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में, जो आप में से पढ़ते हो फिर पढ़ लेना, बहुत सुंदर वर्णन है, स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण बताए हैं। जो स्थित प्रज्ञ है, भाई महाराज को बैठाऊं, जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्थिर बुद्धि है, उसके लक्षण क्या क्या होंगे, ये बहुत अच्छा वर्णन है। उसी में एक चीज ये है, क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट करता है। तो सभी को ध्यान देना है, बहुत अच्छी शांति का अनुभव जीवन में करना है, और अपने अंदर पावर ऑफ साइलेंस को भी बहुत बढ़ाना है तो चित्त को शांत रखना है। हम बहुत बड़े बन जाएं पर उतने ही नम्र चित्त बने। वो मनुष्य जो अपने ईगो को पहचानता है, जो मनुष्य अपने मैंपन पर कड़ी दृष्टि रखता है, उसे छोड़ने का संकल्प करता है, उसका चित्त शांत रहने लगता है। तो सभी को बहुत ध्यान देना है। यहाँ आपको कल सवेरे से ही एक सुंदर चीज कही जा रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सुना है सभी ने, मैं आत्मा। मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ। सवेरे थोड़ा जल्दी उठकर, यहाँ बहुत लोग आप में से जल्दी उठ जाते हैं, कोई लोग तो डायरेक्ट नाश्ते पर ही आते हैं उठ के, लेकिन जो जल्दी उठ जाते हैं उन्होंने देखा होगा सवेरे के समय प्रकृति का सौंदर्य, उसकी शीतलता, शांति, नीरवता कितनी आकर्षक होती है। इसका आनंद आप थोड़ा लिया करें। बड़े शहरों में तो ये कम मिलता है, पर यहाँ तो बहुत मिलता है ना। दो दिन आप और हैं यहाँ, सभी थोड़ा जल्दी उठ के इस आनंद का रस तो चख लें। तो सवेरे उठकर मैं आत्मा शांत हूं, गहराई से, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है उन पांच में से, गहराई से अपने को याद दिलाएंगे रोज पांच बार, मेरी नेचर शांति है, असलियत में तो मैं शांत हूँ, ये क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। भर दें अपने अंतर मन में रोज सवेरे सवेरे, ये क्रोध का फोर्स धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। लेकिन लक्ष्य भी रखना है कि हमें क्रोध की अग्नि को अपने अंतर चित्त में प्रज्वलित नहीं होने देना है। ये अग्नि है, घर में कोई अग्नि नहीं जला सकता, ये हमारी शांति को जलाती है। शांति हमारा बहुत बड़ा खजाना है, खुशी हमारा बहुत बड़ा खजाना है, धन संपदा से भी बड़े खजाने हैं ये। हमें क्रोध की अग्नि में अपनी शांति को जलने नहीं देना है। स्वीकार है सभी को? थोड़े से अभ्यास से आप इस क्रोध को ठंडा कर सकते हैं। केवल लक्ष्य होना चाहिए। देखो मैं एक कहानी सुनाऊं आपको, सच्ची कहानी है ये। कोई एक बहन अपने घर में बहुत परेशान रहती। पूछा, भाई तुम क्यों परेशान हो? घर में दोनों किरानी हैं, सारा दिन काम करती हैं, उनसे काम कराने में मेरा हाल ही बिगड़ जाता है। पता चला कि वो उनको सारा दिन डांटती है, सफाई नहीं की, यहाँ छोड़ा वहाँ छोड़ा। अब सफाई उधर की तो नहीं हुई, पर अंदर की सफाई पूरी खत्म कर दी। सारा दिन दो नौकरों से डांट डपट, शाम को सिर पकड़ के बैठती है, इन नौकरों ने तो जीवन तंग कर दिया। पता नहीं इनको बुद्धि है या नहीं है, किस बाजार में अपनी बुद्धि को बेच खाया है इन्होंने। किसी बुद्धिमान को अपनी बात कही, उसने उसको समझाया, अगर इनको बुद्धि होती ये तुम्हारे यहाँ नौकरी करने आते हैं। काम उन्हें करना है, नौकर इसलिए रखे थे कि तुम रिलैक्स हो, और तुम उनसे ज्यादा परेशान हो, इससे तो खुद ही झाड़ू पोछा कर लेते, सुखी तो रहते। दूसरे को सिखाना, अयोग्य को योग्य बनाना, उनको अपने प्रेम में ऐसा लेना कि वो अपने पन से, जिम्मेदारी से कार्य करने लगे, आपको कहना ही ना पड़े, सिखा देना। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को डांट डपट करते हैं, उसकी कार्य क्षमता डाउन होने लगती है। और जिस व्यक्ति को आप रोज डांटेंगे, समझ लो वो थोड़े दिन में बेकार हो जाएगा। बच्चों को भी ज्यादा नहीं डांटना चाहिए, माताओं को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कई माताएं चाय का थर्मस लेके बैठ जाती हैं रात को बच्चों के साथ, पढ़ो, नींद आती है तो एक लगाती हैं, चाय पिलाती हैं, पढ़ो, बच्चों की बुद्धि नष्ट होने लगती है। ये सच्ची बातें हैं, बच्चों की बुद्धि नष्ट होने लगती है, बचेंगे क्रोध से, अभिमान। चाहे हमारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, चाहे हम बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहे हमें जीवन में बहुत नाम मान शान सफलता मिली है, चाहे हमने बहुत धन कमाया है, चाहे हमारे परिवार बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ईश्वरीय देन है। सब कुछ, बोलो, सब कुछ प्रभु प्रसाद है, हमें मिला है सुखी जीवन जीने के लिए, उसका अभिमान करना ये प्रभु प्रसाद को जहरीला बना देना है, विषैला। और ये आप देख सकते हैं, जिसने अपने धन का अभिमान किया, धन उसके सुखों को छीन लेता है, जिसने अपनी संतान का अभिमान किया, संतान उसे घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, जिसने अपने तन का अभिमान किया, अंत में तन उसको साथ नहीं देता है। इसलिए क्रोध और अभिमान को अपना महावैरी मानकर इसका त्याग करें, यही मनुष्य जीवन की ब्यूटी है। ठीक है, चित्त को शांत करने के लिए देखिए, हमें अपनी संकल्पों की स्पीड को धीमा करना है, जहां से हमने शुरू किया था। आत्मा पर बुद्धि को स्थिर करने की प्रैक्टिस करें। मन क्यों भटकता है, एक छोटा सा सीक्रेट आपके सामने है। मन संकल्प शक्ति है, पता है ना सभी को, मन में क्या उठते हैं, संकल्प। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, सभी ध्यान से सुन लें, ये दूसरा एक बहुत सुंदर रहस्य है। हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है, कौन सी शक्ति, क्रिएटिव एनर्जी है। अब दो रहस्य हैं, हम अपने मन में सुंदर संकल्प क्रिएट नहीं करते, इसलिए मन व्यर्थ सोचने लगता है। मन में सुंदर संकल्पों की रचना करें तो मन इधर उधर भागेगा नहीं। यहां आपको वो श्रेष्ठ संकल्प मिले हैं, मैं आत्मा, आत्मा के स्वरूप को देखते हुए बहुत अच्छा चिंतन मिला है आपको। मैं जानता हूं कि एक दो लेसन से आप उसे सीख नहीं लेते, उसे आप सीख लेना बहुत अच्छी तरह है। हमारे इसी मन में महान संकल्पों का भंडार भी है, अगर हम संकल्प रचते नहीं हैं, तो व्यर्थ संकल्पों की ओर मन भागता रहेगा, संसार के आकर्षणों की ओर भागता रहेगा। तो अच्छे संकल्प रचने प्रारंभ करें, सवेरे उठते ही संकल्प कर दो, आज मैं सबको सुख दूंगा, आज मैं अनेकों को मदद करूंगी, आज मैं अपने हर कार्य को एंजॉय करूंगा, आज का मेरा दिन खुशियों में बीतेगा। ये सुंदर विचार क्रिएट करो। मनुष्य विचार क्रिएट नहीं करता तो उठते ही संकल्प आ जाता है, बहुत टेंशन है जीवन में, इस व्यक्ति के साथ कैसे जीऊंगा, बहुत मुश्किल हो गई। ये नहीं, दूसरी चीज, हमारे हर संकल्प में क्या है, मैं आपको पक्का करा के भेजूंगा यहां से, हमारे हर संकल्प में क्या है, क्रिएटिव एनर्जी, निर्माण शक्ति है। क्या है, फिर पूछूंगा ताकि आप भूल न जाएं, इसलिए अटेंशन, जो विचार हम बार बार करते हैं उसका निर्माण होता है। सब ध्यान दें इस चीज पर, जो विचार हम बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, वो बहन सोच रही है मैं बीमार होंगी, लगता है अब तो मैं ठीक होंगी नहीं। अब रोज वो 10 बार सोचती है अब तो मैं ठीक होंगी नहीं, तो क्या निर्माण कर रही है वो कि मैं ठीक नहीं होंगी। और वो सोचना शुरू कर दे अरे ये बीमारी आई है जाएगी, जो आया है सो जाएगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगी, मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे तो बड़े बड़े कार्य करने हैं, देखो बीमारी विदाई ले लेगी। सभी ध्यान दें हम क्या निर्माण कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए। एक और सुंदर बात मुझे याद आ गई, इससे पहले कि इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं, सभी भाई बहनें जो यहां बैठे हैं अपने जीवन के लिए कुछ सुंदर महान लक्ष्य लेकर चले, मुझे बड़े बड़े कार्य करने हैं, जिस फील्ड में भी हैं आप, मुझे ये बड़ा कार्य करना है, ये उमंग उत्साह के विचार पता आपको क्या क्या देंगे, हेल्दी लाइफ, हेल्दी माइंड, स्ट्रांग विल पावर, बहुत अच्छा मनोबल आपको प्रदान करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके मन के विचार बहुत सुंदर रहेंगे। मुझे बड़े बड़े कार्य करने हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दूं, इस ग्रुप से पहला ग्रुप, उसमें एक नेत्रहीन व्यक्ति भी उस सभा में आया था, अच्छा लंबा चौड़ा पहलवान जैसा, कहानी सुनो उसकी। उसने हिम्मत नहीं हारी थी जीवन में कि मुझे आंखें नहीं हैं, और लोरी पर मोमबत्ती बेचना शुरू किया, मोमबत्ती बनाना शुरू किया, छोटा छोटा मोमबत्ती बनाने का काम घर में शुरू किया, और अब उसने सारे भारत के 10 स्टेट्स में मोमबत्ती के छोटे छोटे कारखाने खोल दिए, 1000 ब्लाइंड लोग को अपॉइंट कर दिया अपनी फैक्ट्री में, और उसका लक्ष्य है कि 2020 बोला या 25 उस दिन कि मुझे 10,000 नेत्रहीन व्यक्तियों को काम दे देना है। बता रहा था जिनके परिवार उन व्यक्तियों को निकालना चाहते थे, ये बेकार है हम इसे नहीं संभाल सकते, आज वो नेत्रहीन व्यक्ति अपने परिवारों को संभाल रहे हैं। सुनो जहां से मैंने बात शुरू की थी, उसने कहा स्पोर्ट्समैन भी हूं मैं, यहीं बैठ के सुना रहा था, और इसी साल मुझे हिमालय की एक चोटी है 22,000 फीट ऊंचाई पर, उस पर चढ़ना है, और अगले साल मैं देहरादून में ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं, अगले साल मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है, मैं संसार का पहला नेत्रहीन व्यक्ति होऊंगा जो एवरेस्ट पे भारत का झंडा लहराएगा। देख लीजिए, और मैं देख रहा था, मेरे कमरे में भी आया मेरे से मिलने, 15 मिनट बैठा, मैं देख रहा था कि इस विचार ने उसको एनर्जेटिक कर दिया है, इस विचार ने उसकी सोई हुई शक्तियों को जगा दिया है, उसकी सोई हुई योग्यताओं को जागृत कर दिया है। हम सब ये बात अच्छी तरह जान लें, हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स, योग्यताएं, बुद्धि की शक्ति, मन का बल सबके पास बहुत ज्यादा है, कुछ करने का जज्बा हमारी उन सभी चीजों को जागृत कर देता है। इसलिए अपने को कभी भी निराश नहीं, निरुत्साहित नहीं, थोड़ी सी हार के बाद परेशान नहीं, सदा याद रखना जीवन में जो मनुष्य हार कर भी हार न माने, विजय और सफलता सदा गले उस हाथों में हार लेकर उसके स्वागत को तैयार रहती है। हारने के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं आपको कह रहा था जीवन में बहुत अच्छे कार्य करने का उमंग ले आओ, आपकी अनेक निगेटिव चीजें समाप्त हो जाएंगी। पसंद है? युवक जो बैठे अच्छी तरह सोच लो, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, निराश हो गए, सारा मनोबल डाउन कर दिया, और मैंने ऐसे ऐसे युवक देखे इंजीनियरिंग करने के बाद चाट बेचना शुरू कर दिया घर में, और चाट से इतनी आमदनी होने लगी। सच्ची घटना है, आप जाके देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का जिसने भी किया, घर में बाप चाट का काम करता था, उन्हें चाट शुरू कर दिया, लाख रुपए की आमदनी हर मास होने लगी। उसको लोगों ने कहा तुमने इंजीनियरिंग किया है, चाट वाट छोड़ो नौकरी करो। कहा नौकरी में 30-40 हजार मिलेंगे, अधीनता रहेगी, मेरी चाट अच्छी है ना, मैं भी खाता हूं, सबको भी पसंद करता हूं। निराश नहीं, सुने फिर वहीं आ जाएं। हमारे हर संकल्प में क्या है, माताएं बोले फिर से, निर्माण शक्ति। मेरे साथ अभी एक सुंदर विचार कर दें, सभी कर दें बिल्कुल सच्चे मन से। मेरे साथ आज से जो कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर बन जाओ, आपका भविष्य किसी और के हाथों में नहीं। मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे हम इसे कहते हैं स्मृति का तिलक लगा दो। यहाँ लोग तिलक लगाते हैं ना मंदिरों में, स्मृति दिला दो अपने को, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत, भी जोड़ दो, बहुत अच्छा होगा। इससे आपका भविष्य सुंदर हो जाएगा, आप जीवन की यात्रा का आनंद ले सकेंगे। तो हमारे संकल्प ही हमारे चित्त को शांत करते हैं। और सभी ये याद रखेंगे, जितना हमारा मन शांत रहेगा उतना ही ये शक्तिशाली बनेगा। हमारे अपने हाथ में है अपने मन को कंट्रोल करना। एक और विधि मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो रोज सवेरे कर लिया करना। मैं आत्मा हूँ, आप सभी ने जान लिया है। अब मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत शांत हूँ, परम पवित्र हूँ, इसके साथ ये अभ्यास करना, मैं आत्मा यहाँ हूँ, ये जो प्रकृति है मस्तक, ये मेरा सिंहासन है और मैं राजा हूँ इस देह की, इन कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कारों की। इसको एक बहुत सुंदर शब्द दिया गया है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। क्या हूँ? स्वराज्य अधिकारी, अपनी राजा। लोग दूसरों पर राज करना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है मैं दूसरों पर राज करूं, पर जब तक हम अपने पर राज नहीं करना जानते, दूसरों पर राज कदापि नहीं होगा, टेंशन हो जाएगी हमें। जो व्यक्ति अपना राजा बन जाता है वो तो इस प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकता है, वो समस्त विश्व का राजा बन सकता है। तो रोज अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अपने को फीलिंग दे, ये मन मेरा है, मैं इसकी मालिक हूँ, ये बुद्धि मेरी है, मैं इसकी मालिक हूँ। तो हे मन, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरी आज्ञा के बिना यहाँ वहाँ नहीं भाग सकते। अपने मन को जरा ये फीलिंग दे दो, आप पाएंगे मन आपके आदेश का पालन करने लगेगा। तो सभी यहाँ आकर अपने मन को शांत करने का मंत्र जैसा ले जाएं कि अपने मन को शांत करना हमारे अपने हाथ में है, हर बात को सीरियसली सोचने की जरूरत नहीं। जीवन की शांति के लिए, जीवन को आनंदित करने के लिए सहज जीवन बनाना परम आवश्यक है। इजी लाइफ, सहज सोचना, हर चीज को सहज भाव से देखना। बड़ी चीज भी आ गई, सहज भाव से देखना जाएगी। कोई बड़ी समस्या भी आ गई, परेशान न होकर सहज भाव से देखना, खत्म हो जाएगी, हल हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। जितना आप सहज भाव से रहेंगे, आपकी समस्याएं सहज रूप से हल हो जाएंगी, बीमारी सहज रूप से भाग जाएंगी, सब कुछ सहज आपको अनुभव होने लगेगा। जीवन की शांति के लिए एक चीज और बहुत प्रैक्टिकल है, अपने हर कार्य का आनंद लें, एंजॉय करें हर कर्म को। विचार करेंगे सभी, सबको कर्म करने हैं, बहनों को घर में खाना बनाना है, मान लें उसका आनंद लो, बहुत प्यार से, बहुत शांति से, अच्छे अभ्यास करते हुए भोजन बनाओ, भोजन में आपका प्यार और आपकी शांति भर जाएगी, भोजन बहुत बड़ी औषधि बन जाएगा, भोजन बहुत बड़ी औषधि है। अगर उसमें प्रेम और पवित्र वाइब्रेशंस भर दिए जाएं, प्यार और खुशी में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की शक्ति है। तो आनंद लो, ये नहीं भोजन बनाना है, भोजन बनाना है बहुत काम है, आज तो थक गए हैं, पहले ही हम तो परेशान थे, ये भोजन भी हमको थका देता है, ये नहीं, हल्का लेकर एंजॉय करें। भाई लोगों को जो भी काम हो, अपने सारे दिन के हर काम को लाइटली करें। किसी भी कार्य की शुरुआत भारीपन से ना हो। देखो भारत में आप सब परिचित हैं, सब करते हैं, जब कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं, मान लो आप मकान ही बना रहे हैं, तो पंडित को बुलाएंगे, कुछ पूजा पाठ कराते हैं या नहीं, शादी भी हो रही है, गृह प्रवेश करना है, इवन बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन दिलाना है, तो कुछ ना कुछ शुभ मुहूर्त से काम शुरू करते हैं ना। इसका कारण ये है कि कोई भी कार्य जिस तरह की मनोस्थिति से प्रारंभ किया जाएगा, उस पूरे कार्य पर उस समय के संकल्पों का सदा प्रभाव रहेगा। इसलिए जो भी काम आप शुरू करें, अच्छे संकल्पों से प्रारंभ करें। आप घर से बाहर जा रहे हैं कार्य करने, योग आप थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे, संकल्प करेंगे, भगवान मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इस कार्य में मुझे सफलता ही सफलता मिलेगी, इस कार्य के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे, ऐसे सुंदर विचार करके घर से चलो। हम लोग तो यहाँ सीखते और सिखाते हैं, जब घर से निकलो 3 मिनट राजयोग मेडिटेशन करके अपने मन को अच्छे विचारों से भरकर फिर घर से बाहर चलो, तो आप देखेंगे पूरे कर्म पर आपकी उस मनोस्थिति का सुंदर प्रभाव दिखाई देगा। और घर से आप चले और आप आपसे किसने झगड़ा कर दिया, 5-7 मिनट झगड़े के बाद आप घर से चले हैं, तो क्या होगा, पूरे कर्म पर उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। तो हर कर्म को सहज भाव से करते चलेंगे, हर कर्म को एंजॉय करेंगे। मैं सिखाता हूं युवकों को, बाइक चला रहे हो ना, आनंद लो, ऐसे नहीं बस तेज चलानी है, जल्दी पहुंचना है, इधर कट मारना, उधर को चलना है, दिखावा करना, ये नहीं, एंजॉय करो। भोजन खा रहे हैं उसको एंजॉय करो। कई लोग भोजन खाना भी एक काम उतारना समझते हैं, जल्दी जल्दी भर लो पेट में, इनडाइजेशन हो जाएगा। आनंद लो भोजन का, रस निकलेंगे, स्लाइवा कहते हैं, रस मिलेंगे भोजन से, भोजन आपके लिए औषधि और शक्ति बन जाएगा। तो इस तरह अपने जीवन को ऐसा ढाल लें सभी कि सवेरे से शांति से दिनचर्या की शुरुआत हो और बहुत प्रेम और खुशी से दिनचर्या की समाप्ति हो रात को। ये नहीं उठे तो भी टेंशन, सोए तो भी टेंशन, किसी बुरे प्रभाव में सो गए, किसी ने आज 10 बातें बुरी बोल दी थी, उनको इधर रख लिया है, उसके साथ सोए हैं, अगले दिन सवेरे भी उसके साथ उठे हैं, इससे जीवन का सर्किल बिगड़ रहा है। सवेरे उठें, सुंदर विचारों से दिनचर्या को प्रारंभ करें। मैं एक छोटा सा विचार दे रहा हूं आपको। सवेरे उठते ही अपने परम पिता को, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करें। आंख खुली, शिव बाबा गुड मॉर्निंग स्वीकार करो। पहला विचार प्रभु मिलन का, पसंद है? पहला विचार प्रभु मिलन का। दूसरा विचार करो, मैं बहुत भाग्यवान हूं। हे शिव बाबा, हे मेरे परम पिता, जो भी आप उसे कहते हैं, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। शुरू करो ऐसे, मैं बहुत खुश नसीब, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। एक चेन बना दो सुंदर विचारों की सवेरे ही, और देखो सारा दिन और फिर सारा जीवन कितना सुंदर चलता है। तो हम अपने भाग्य के, अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं, ठीक है? तो शांति अपने हाथ में, और ऐसे शक्तिशाली बनेंगे, जो वह पहली बात मैंने कही थी, हमारी शांति को, हमारी खुशी को, हमारे सुख को हमसे कोई छीन नहीं सकता। और लास्ट बात, फिर हम मेडिटेशन करेंगे, बहुत अच्छा। अपने चित्त को शांति से भरने के लिए, अपने जीवन को आनंदित करने के लिए, अपने अपने मन में अभी सब संसार के हर मनुष्य के लिए प्रेम और सद्भावनाएं धारण कर ले मन में। संसार में हर व्यक्ति अच्छा है, सब मेरे गुड फ्रेंड हैं, सबका कल्याण हो, ऐसी भावनाएं रखने से आनंद ही आनंद रहेगा। ओम शांति। हम आपके सामने संकल्प रखेंगे, जिसको हम कमेंट्री कहते हैं। सभी उसमें स्थित होते जाएंगे। जब तक सब बैठे, मैं आपको एक दो बात कह दूं। मन बुद्धि दो चीजों का अभ्यास करेंगे हम मेडिटेशन के लिए। बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र और मन संकल्प शक्ति। तो बुद्धि से, तीसरे नेत्र से आत्मा के स्वरूप को देखेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, और फिर हम अपनी बुद्धि को ऊपर ले चलेंगे, ब्रह्मलोक में परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर करेंगे, उसे शांति शक्ति और पवित्रता को रिसीव करेंगे। जिस चीज को भी हम देखते हैं उससे हमारा कनेक्शन हो जाता है, उसके वाइब्रेशन हमको आने लगते हैं, परमात्मा के स्वरूप को देखते ही उससे हम जुड़ जाएंगे, उसके वाइब्रेशन हम में आने लगेंगे। रेड लाइट प्लीज चलें। अब थोड़ा सा गीत बजता है पहले, फिर हम कमेंट्री से शुरू करेंगे।
शाम
आत्मा पर एकाग्र हो जाएं सभी। मैं अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रकुटियों के मध्य में विराजमान हूँ। शांत हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी नेचर है, मेरा स्वधर्म है। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं शांत हूँ। परम पवित्र हूँ। पवित्रता मेरी मूल स्थिति है। मैं निर्विकारी परम पवित्र हूँ। चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ। मैं शक्ति पुंज हूँ, शक्तियों से संपन्न हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। इस देह से न्यारी हूँ। मैंने इस देह में प्रवेश किया है। देह अलग, मैं अलग। शांत। बुद्धि के नेत्र से ऊपर की ओर निहारें, विजुअलाइज करें। नीला आकाश, चांद तारे, उसके बहुत ऊपर ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम है। इस संसार में आने से पहले मैं आत्मा यही थी, ये स्वीट साइलेंस होम है मेरा घर। फील करे मैं आत्मा अपने घर में हूँ, यहाँ संपूर्ण शांति है। डीप साइलेंस, संकल्प शांत, सबसे ऊपर यहीं पर मेरे परम पिता शांति के सागर, निराकार महाज्योति, देखें उनका स्वरूप, महाज्योति उनसे चारों ओर अनंत शक्तियां फैल रही हैं। ये हमारे परम पिता हैं, ये वही हैं जिनको हम ढूंढते थे। ये वही हैं जिनसे हम मिलना चाहते थे। देख लें इन्हें जी भर के, सत्यम शिवम सुंदरम है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उनकी शांति की तरंगे मुझ में समा रही है। मेरा चित्त शांत हो रहा है। मैं शांति के सागर की संतान, शांति से भरपूर हूँ। मेरे परम पिता सुखदाता ज्ञान के सागर, पतित पावन पवित्रता के सागर, मैं ब्रह्मलोक में उनके साथ हूँ, उनकी संपूर्ण शक्तियां और पवित्रता मुझ में समा रही है। मेरा चित्त निर्मल पवित्र और निश्चल हो रहा है। यहाँ से मैं आत्मा नीचे आती हूँ, उन्हें अपनी देह में भ्रकुटी की कुटिया में देखें, अपने ज्योति स्वरूप को मस्तक के मध्य में मैं आत्मा शांत हूँ। शांति के सागर की संतान हूँ। शांति तो मेरी मूल नेचर है। मैं अपना पूरा जीवन शांति से व्यतीत करूंगी। मैं प्रेम के सागर की संतान, प्यार से भरपूर हूँ। मैं आत्मा जहाँ भी जाऊंगी सबको प्यार ही प्यार बांटूंगी। मेरे चित्त में संसार के सभी मनुष्यों के लिए निर्मल प्रेम समाहित है। मैं प्रेम की चेतन प्रतिमूर्ति हूँ। मैं सुखों के सागर की संतान, सुख स्वरूप हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। मेरा परम पिता पवित्रता के सागर हैं। प्रकृति को भी पावन करने वाले हैं। विकारों से मेरा कोई नाता नहीं, मैं परम पवित्र हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान, उसकी शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। विघ्न बाधाओं से अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं भगवान की संतान हूँ। वो मेरा परम पिता है। जो कुछ उसका है वो सब मेरा है। उसकी संपूर्ण शांति मेरी शांति है। चलें पुनः डीप साइलेंस में। मैं आत्मा शांत, चित्त पूरी तरह शांत। Deep silence.
तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, दानों के दाता हो, हम तुमको पाकर पाए हम तुमको पाकर पाए गति सद गति उपहार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार परम पिता परमात्मा